आज प्रस्तुत है अल्ताफ फातिमा की कहानी गैर मुल्की लड़की। वह गैर मुल्की लड़की जो खीरी जिला लखीमपुर से आई, या यूँ कहिए कि विवाह के लिए लाई गई थी, महीनों से यहाँ पड़ी थी और सख्त बोर हो रही थी। इसी बोरियत की अवस्था में उसने अपनी माँ को पत्र में लिखा था, और सुना अम्मा भी, यहाँ पाकिस्तान में लोग शक्कर को चीनी कहते हैं और उसको कुंजी थाले में रखते हैं, और हाँ, यहाँ लड़के लड़कियाँ आपस में हंसी मजाक तक अंग्रेज़ी में करते हैं। बड़ी देर तक वह अपनी कच्ची कच्ची सी लिखाई में छोटी छोटी सी बातों को महत्व दे देकर लिखती रही, बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से जिस तरह की जिम्मेदारी गैर मुल्कों से पत्र लिखते समय बरती जाती है। और भाई, वह क्यों ना लिखती? वह कोई ऐसी वैसी तो नहीं थी, खालिस गैर मुल्की लड़की थी। उसके काले बड़े बक्स में सचमुच का पासपोर्ट और वीज़ा झिलमिल करते रेशमी कपड़ों की तह में रखा था। सरहद पर उसकी पूरी पक्की तलाशी हुई थी और स्टेशन से वह सीधी थाने ले जाई गई थी अपने आगमन की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हर हफ्ते ही वह इसी किस्म के लंबे चौड़े पत्र लिखा करती थी, पूरी तन्मयता और जोश से, इसलिए कि वह यहाँ सख्त बोर हो रही थी, और यह कि पच्चीसियों बातें ऐसी थीं जिनकी याद हरदम सताया करती थी। अब्बल तो खीरी का वह लखौरी ईंटों का बना पुराने ढंग का मकान, जिसको आपका जी चाहे तो हवेली भी कह सकते हैं, और उसके दालान सेहनचियाँ याद आते थे, और फिर आंगन की दीवार से लगा हुआ बेरी, वह छतनार पेड़ जिसमें खट्टे मीठे बेर लगा करते थे, सुर्ख पीले बेसनी बेर जिनको सुनसान दोपहरों में वह बारीक पिसे हुए नमक मिर्च के साथ चटकारे ले लेकर खाया करती थी, और फिर ऊपर से कलईदार नक्शदार कटोरे में भर भर कर ठंडा पानी पिया करती थी। यह और ऐसी ही कितनी अन्य बातों के अलावा उसको अपनी दादी अम्मा और उनकी जली कटी बातें भी कुछ कम न याद आती थीं। पहली पहल जब घर में उसके पाकिस्तान जाने की बातें शुरू हुई तो उसने शुक्र ही किया, अच्छा है इन कमबख्तों हर दम लड़ने झगड़ने वाली बहनों और लंबी लंबी सूखी सूखी टांगों वाले भाइयों से मुक्ति तो मिलेगी, 24 घंटे उसकी जान को आए रहते थे। फिर उसके कान में ये खबरें भी पड़ने लगीं कि उसकी शादी के लिए वहाँ मछली फूफू के पास भेजा जा रहा है। उई, मछली फूफू आज तक अपनी शादी तो करवा ना पाई, मेरी खाक करवाएंगी, उसने मन ही मन सोचा, मगर प्रकट में यूँ घुन्नी बनी बैठी रही जैसे उसको कुछ खबर ही ना हो। लेकिन यह हकीकत है कि जिस तेज़ी से पासपोर्ट के पड़ाव तय हो रहे थे, उसी तेज़ी से उसका मस्तिष्क सोचने में व्यस्त था। उई, यह भी कोई बात हुई कि शादी करवाने अपना देश छोड़कर परदेश जाओ? ऐसे क्या पाकिस्तान के लड़कों में सुर्खाव के पर लगे हुए हैं? यह क्या इन लोगों के दिल में समाई है जो अपनी लड़कियों को ढकेल ढकेल कर भेज रहे हैं? वहाँ के लोग क्या कहेंगे? और उन दादी अम्मा को देखो, अब कैसी चुप्पी मारे बैठी हैं, सारे तमाशे अपनी आँखों से देख रही हैं। वह सहनची में बैठी सूखी चमरख दादी अम्मा को चुभती नज़रों से घूरती, क्या तो इतनी दकियानुसी बनती थी कि ज़रा दुपट्टा जगह से बेजगह हो और इन्होंने टांग ली। उस दिन जरा सी कनकैया की डोर क्या लूट ली तो जान आ गई। उई, क्या हवाई दीदा लड़की उठाई है, पूरा लौंडा है, क्या मंजे से भाइयों के संग कनकवे लूट रही है, और जो जरा आए गए के सामने जा बैठी तो फौरन टोक देंगी। ए बीबी, तुम क्यों बुर्ज मुँह पर चढ़ी आ रही हो, चलो ज़रा शरबत तो बना लाओ। और अब एकदम ऐसी रोशन ख्याल हो गई कि यह भी ख्याल नहीं कि बेटी उठा पराए देश चलती कर दी। न दूल्हा आया, न बारात चढ़ी, न सूत न कपास, और दुल्हन बेगम चली जा रही हैं जुलाहे से लठम लट्ठा करने। अब कैसी चुप्पी साधी है बड़ी बी ने। बस जम्मों का दिन ऐसी ही ऊट पटांग बातें सोचते हुए कट जाता। जो सच पूछो तो उसका दिल पढ़ने लिखने से भी उचाट हो गया था, स्कूल जाती और किताबें आला पर डाल देती। अरे जम्मू, सुना है तू अपना विवाह रचाने पाकिस्तान जा रही है, लाजवंती की तरह नाजुक और लचकदार सुरजीत कौर ने उसको छेड़ा। हाँ, जा तो रही हूँ। वह मारे बेबसी के ढिटाई और चिड़चिड़ेपन पर उतर आई। इस बेचारी को पाकिस्तान दुल्हाई जुड़ा, सरूपी आंखें मटकाती। हाँ चल, तुझे भी जुड़वा दूँ। फिर वह जल कर सोचती, अभी जुड़ा किस कमबख्त को है, अभी तो वीज़ा लेकर ढूंढने निकलना है। अरे जम्मू, तुझे खबर है तेरे ससुराल वाले यानी पाकिस्तान वाले कैसी जबान बोलते हैं? सुरजीत फिर बात शुरू करती। खबर क्यों नहीं, तेरी ही तरह बैठकर साढ़े फाड़े किया करते हैं वे। वह जले कटे जवाब दिए चली जाती। भाई जम्मू, सुरजीत से अदब तमीज़ से बात किया करो। जो सच पूछो तो देश के रिश्ते से ये तुम्हारी ननद लगी, खासुल खास शहर लाहौर से आई है और तुम वहीं चली हो। कमर उल निसा ने अपने हिसाब से बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कह दी। जम्मू का बस चलता तो जूता लेकर इन कमबख्तों पर पिल पड़ती। नफरत आ रही थी उसको इन सब की शक्लें देख देख कर। खुद तो कमबख्त अपने अब्बा अम्मा के कूले से लगी बैठी थी। एक बही थी जिसे यूसुफ़ गुमगश्ता की तलाश में भेजा जा रहा था, मगर वह यूँ अपनी शिकस्त मानने वाली ना थी। उल्टा भभक भभक कर कमर उलनिसा को कोसना काटना शुरू कर देती। अल्लाह करे कमरन तुम भी पाकिस्तान ही भेजी जाओ, अल्लाह करे बंगाल को फेंकी जाओ। ए जम्मू, तुम तो ऐसी बेजार हो, वहाँ भी अपने मामू चाचा फूफी के लड़के ही होंगे। कमरन फिर टोकती, हुआ करें, हम उनको क्या जाने। लो भाई, अब वह वहाँ के रहने वाले और हम जम्मू हकला जाती। दरअसल वह इतनी सीधी थी कि अपना मतलब भी उनको ना समझा पाती। निगोड़ी जा रही है इस घर से दुल्हन बने और मांग में सिंदूर भरवाए बिना, अम्मा बी ने कहा तो दादी अम्मा से था, मगर सुन लिया जम्मू ने। और इसका नतीजा यह हुआ कि जब ज़रा ही देर बाद चुन्नू झपट्टा मार उसके हाथ से जामुनों का प्याला छीन कर ले गया तो वह उसका बहाना पकड़कर फूट फूट कर रोई। और उसने अपने आप को खूब ही तो कोसा, इतना कि सुनकर अम्मा बी ने घर भर को दुत्कार डाला। अरे भागबानो, अब तो चारों इसको ना सताओ, वह तो खुद ही दफा हो रही है। ऐसा हर वक्त उसका पीछा किया कि वतन से बेवतन हो रही है। अब तो सब्र कर लो कुछ दिन। और जब अब्बू को पता चला कि उनकी बेटी जामुनों के लिए रो रही है तो खुद उन्होंने उसको गले से लगा लिया। मैं अपनी बिटिया को जामुने मंगा कर दूंगा। और अब्बू, कम रखें भी, जम्मू ने सिसकियां लेते हुए कहा। उसको पता था कि पाकिस्तान में कमरख नहीं मिलती। जब उसने कमरखों के ढेर सारे कचालू और नमक डालकर फटकी हुई जामुने खाकर पानी पिया तो दादी अम्मा अपनी फटी फटी आवाज़ में चिल्लाईं, क्यों नेकबख्त अपनी जान के पीछे पड़ी है, अरे गला बैठ जाएगा। वहाँ वाले क्या कहेंगे कि गला बैठी दुल्हन उतरी है। दादी अम्मा के हिसाबों तो वह उसी दिन से दुल्हन बन चुकी थी जिस दिन से मजली फूफू ने पत्र में लिखा था कि यहाँ चंद अच्छे लड़के रोज़गार वाले लड़के नज़र में हैं, जम्मू आ जाए तो इसका इंतज़ाम हो सकता है। बस लड़की भेज दो, बाकी सारी बातें मैं खुद निपट लूँगी। और जम्मू का यह था कि जब स्कूल जाने को दिल ना चाहता तो प्यास की गांठ बगल में दबा कर धूप में पड़ जाती। बुखार चढ़ाने की यही तरकीब उसने सुन रखी थी, मगर बुखार न तब कभी चढ़ा और ना अब। जो वीज़ा मिलने वाला था तो बीमार पड़ने की कोई तरकीब काम नहीं कर रही थी। और यूँ वह गैर मुल्की लड़की खीरी से यहाँ आई या लाई गई थी और सख्त बोर हो रही थी, इसलिए कि मजली फूफी खुद तो कॉलेज में पढ़ाती थी और मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की हो गई थी। वह रहती भी बड़े चचा के लड़के के साथ थी। अब यह था कि बड़े चचा के लड़के यानी छोटी भैया बड़े तने तने से रहते थे। वह बड़ी कोठी, एयर कंडीशन कमरे, फ्रिज और जनाब बिजली का टोस्टर और ओवन, अल्ला बल्ला, बैठने को ओपल रिकॉर्ड, बात करने को टेलीफोन। भाई ये पाकिस्तान तो बिल्कुल अमरीका हो रहा है, उसने सहम कर सोचा। हम बेचारे सीधे साधे लोग ठहरे। ना भैया, पाकिस्तानी दूल्हा भी कोई टेढ़ी खीर होगा, और अगर उसके घर में ये अटम शटम हुआ तो वह तो ऐसी कुबड़ और बेअकल सी थी कि सारी मशीन तोड़ताड़ बैठ रहेगी। और क्या ताज्जुब, इतने बड़े नुकसान पर उसको वापसी का टिकट ही मिल जाए। उसकी बिसाथी कितनी थी, 16-17 साल की 9वीं जमात तक पढ़ी हुई, वहाँ के मुट्ठी भर सिमटे सिमटाए मुस्लिम माहौल में पली हुई कस्बाती लड़की, इससे ज़्यादा सोच भी क्या सकती थी। मजली फूफू की अनुपस्थिति में आए गए मेहमान तक एक कोमल कांत और लजीली सी बेहद सादा लड़की को घर में घूमते फिरते देखकर उसके बारे में पूछताछ करते कि वह कौन है, तो फिर जवाबदेह भाभी को ही होना पड़ता। वह उस पर तरस खाने के अंदाज में उनको बड़े विस्तार से बताती। सारांश ये होता कि बेचारी शादी के लिए यहाँ आई है, बात यह है कि सारे ढंग के लड़के तो यहाँ हैं, और वह मन मन में कुड़कुड़ाती, बड़े ढंग के लड़के हैं यहाँ के, यहाँ के लड़के खाक भी तो उसकी समझ में ना आए थे, गहरे गहरे रंगों की नीली नीली कमीज़, बंदूक के गिलाफ जैसी पतलूने, हर दम मुल्क को आप ही गालियाँ देते, मुंह से सड़ी हुई शराब के भभके उड़ते, बस फुल स्टॉप पर रेडियो लगा है और उसके आगे भटक रहे हैं। बड़े भैया के वर्ग और माहौल में उसको ऐसे ही लड़के नज़र आए थे और वह मुंह भर भर कर एतराज़ करती। वह अपने दिल में जल जल कर सोचती रहती और मेहमान बीबी एतराज़ करती, ऐ अकेली शादी करने आ गई, खुद क्या आ गई, इन बेचारों ने बुला भेजा है, आप वहाँ के हालात तो जानती ही हैं, वहाँ लड़के कहाँ मिलते हैं। यह सब बातें जानबूझकर ऊंची आवाज़ से कहती थी और जम्मों का खून खौल जाता, कैसी बातें बताती हैं। ये और हुई कि हमारे यहाँ लड़के कहाँ, तो क्या हमारे यहाँ लड़कों का बीच ही मारा गया, ए हटो, ढेरों लड़के खुद तो मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। यह और बात है कि उनके घरों में ऐसी अला बला नहीं होती, वे बेचारे तो सीधे सादे कपड़े पहनते और लालटेनों की टिमटिमाती रोशनियों में किताबों पर सर झुकाए रात गए तक पढ़ा करते हैं, और जब रिश्तेदारों की लड़कियां मिलती तो वह भी उसको हास्यास्पद नज़रों से देखती या फिर नसीहतों पर उतर आती, तुम ज़रा तो मेकअप करना सीखो। सच्ची बात तो यह थी कि उनको जम्मू की यह हरकत ज़रा भी ना अच्छी लगी कि वीज़ा पासपोर्ट लिए दुल्हा ढूंढने दौड़ी चली आई। यहाँ कौन सी लड़कों की फसल कट रही है, यहाँ आप तोरा पड़ रहा है, कोई अमेरिका से लिए चला आ रहा है तो कोई फ्रांस से, एक तुम भी आ गई हिस्सा बंटवाने। जब्बो का स्वभाव ज़िद्दी था, मजाल थी जो किसी की नसीहत मान जाती, बकने दो, वह सोचती। दादी अम्मा तो कहा करती हैं कि ज़्यादा सिंगार करने वाली लड़कियों के मुंह पर दुल्हनियापे से नूर नहीं उतरता है, अच्छा है अब कमबख्तों के मुंह पर ठीकरे फूटेंगे। बख्शो, मैं बाज आई तुम्हारे यहाँ के दुल्हा से, तय किए हुए लड़कों में से किसी के साथ सिनेमा हॉल में बैठकर रोना पड़ता था, इसलिए कि वह अंग्रेज़ी फिल्म उसके कतई पल्ले ना पड़ती थी, जिसकी हीरोइन बिल्कुल सिड़नों जैसे रंग ढंग की होती थी और उसके कपड़े इतने बेकाबू होते कि फिसले पड़ते, और वह लड़के इतने बोर कि उसी सिड़न सी पर मरते हैं, और लड़कियां बेचारियां उनको खुश करने के लिए उसी के स्टाइल के बाल कटा कटा कर दीवानी हुई जाती हैं। वह ऐसी ही बेसुरी बातें सोचती होती कि फूफू का हाथ आगे बढ़ता और बड़ी खूबसूरती से उसके भीगे भीगे उनावी होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक थोप देती। वह अचानक ही रुमाल से होंठ रगड़ डालती, तौबा, मार जैसे घी सा लग गया हो। मछली फूफू सख्ते में आ जाती, ये हमारी भावज ने लड़की पाली है, अब ऐसी लड़की को तो वर मिलना मुश्किल ही था। वह वेदिल से सजती बनती तो बाकी उजबक सी उखड़ी उखड़ी नजर आती, सच पूछो तो वह उसके भविष्य से निराश होती जा रही थी। इसे तो कोई मरा टूटा क्लर्क ही कबूल कर ले तो बड़ी बात है, ऐसा तो वहाँ भी मिल जाता, उसको तो बुलाना ही बेकार हुआ। बाहर से वापस आकर उसको समझाती डांटती और यह हकीकत उसके मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करती कि तुम फिजूल ही अपने आप को अजनबी समझ रही हो, आखिर ये लड़के कोई गैर तो नहीं, अपने ही रिश्तेदार और मुलाकातियों के लड़के हैं, यहाँ में और वहाँ में फ़र्क ही क्या है। फूफू क्यों नहीं, वाह ये अच्छी रही, फिर आखिर ये वीज़ा पासपोर्ट और सरहद की तलाशियाँ, ये सब क्या बला है भाई, हम तो गैर मुल्की हैं। वह भी खासा जबान चलाती, अच्छा चलो खामोश रहो, सब बकवास है, कोई फ़र्क नहीं, मजली फूफू एक तरफा फैसला सुना देती। भाई अजीब घपला है, वह चुप रहकर सोचती। मजली फूफू सदा ही उसकी शिकायतों के दफ्तर अम्मा को लिख भेजती, लेकिन इस बार तो उन्होंने जाने क्या लिख मारा था कि उसके बड़ी मेहनत से लिखे हुए पत्र के जवाब में, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से इशारों इशारों में लिखा था कि यहाँ के लड़कों में उसको तो कोई सुर्खाब के पर नहीं नज़र आते, और यह कि उसमें और इनमें ज़बरदस्त फ़र्क है दो मुल्कों और समाजों का, अम्मा बी ने उसको एक लंबा चौड़ा और अजीब पत्र लिखा था। कस्बाती माहौल में रहने वाली कम पढ़ी माँ ने बड़ी मेहनत से जो फ़िलसफ़ा और दृष्टिकोण अपनी टूटी फूटी और उलझी हुई लिखित में लिखा था, उसका सारांश कुछ यों था कि प्यार, खुशामद, नाराज़गी और उल्हानों के साथ साथ उन्होंने उसको समझाया था कि वह फ़र्क जो वह अपने और उनके बीच में पाती है, वह मुल्क, नस्ल और समाज का नहीं बल्कि वर्गों का है, और जब इंसान अपने वर्ग से निकल ऊंचे वर्ग में शामिल हो जाते हैं तो सारा फ़र्क अपने आप मिट जाता है। उन्होंने उसको समझाया था कि उसकी बेहतरी इसी में है कि वह मजली फूफू के कहने पर अमल करे और वापसी का ख्याल छोड़ दे। पत्र उसके हाथों से गिर गया, जैसे आँखों के नीचे अंधेरा सा आ गया हो। ओह, इस दुनिया में किस कदर घपला है, और दुनिया जिसे वह बहुत छोटी सी और दिलचस्प सी समझा करती थी किस कदर विशाल और परेशान कुन है। हाँ तो क्या वाकई अब अपने वतन से मेरा नाता टूट गया, उसके दिल की धड़कनों ने रुककर सवाल किया, और जैसे उसकी अम्मा के गिरे हुए पत्र ने सिर उठाकर कहा, हाँ मेरी चंदा, अब तुम इस देश से रिश्ते कायम कर लो, मेरा मतलब उस वर्ग से है। अच्छा अम्मी, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो यही सही, अब मैं अपने वर्ग से कोई वास्ता ना रखूँगी, अब तुम मुझे देखोगी तो शायद पहचान भी ना पाओ। उस गैर मुल्की लड़की ने खुश्क आँखों और दुखी दिल से सोचा और अपनी अम्मा का पत्र उठाकर वेध्यानी में चूम लिया।